समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है लू से रोकथाम और उपायों पर चर्चा। उत्तर भारत में गर्मी का कहर शुरू हो गया है और संभावना जताई जा रही है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले हीट वेव यानी लू ज्यादा दिन तक चलेगी। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में बताया है कि आगामी 3-4 महीनों में 10 से 20 दिन तक लू चलेगी। सरकार अत्यधिक गर्मी और लू से बचाव के लिए राज्य सरकारों और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश और सलाह भी दे रही है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि लू होती क्या है, इसे कैसे चिन्हित या परिभाषित किया जाता है, अमूमन इसकी अवधि क्या होती है और इससे बचाव के उपाय क्या हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, आपके मन में भी लू से संबंधित, उसके बचाव लक्षण से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और 2342105 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें या कोई सवाल पूछें, बेंगलोर से श्रीकांत इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। हेलो श्रीकांत, आपको हमारी आवाज आ रही है?
हाँ, मुझे आ रही है
जी। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए।
धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि हम लोग गर्मी के किस स्थिति को लू समझे? हेलो।
हाँ जी,
गर्मी की किस स्थिति को?
श्रीकांत जी का कहना है कि हम गर्मी की किस स्थिति को लू समझें, शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाना चाहिए या कैसा रहना चाहिए जब हम डिक्लेयर करें कि ये हीट वेव है। राजेंद्र जी जी, आप
श्रीकांत जी नमस्कार। जैसे आपने पूछा कि हीट वेव कब घोषित हो, इसके लिए दो कंडीशन बहुत आवश्यक हैं। एक जो है, जैसे कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री होना चाहिए, पहाड़ों के लिए यह 30 डिग्री है और जो कोस्टल स्टेट है वहां पर इसका 37 डिग्री होना आवश्यक है। इसके साथ ही जो दूसरी कंडीशन है, यह टेम्परेचर से 5 डिग्री अगर ज्यादा है, अगर जहां 40 टेम्परेचर है, अगर 45 डिग्री टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर 2 दिन तक के लिए कंटिन्यूस करता है तो उस पीरियड को हम जो है हीट वेव घोषित करते हैं। ये लू होने लगने का जो है लू होने वाला टाइम पीरियड होता है।
अमूमन कितने दिन राजेंद्र जी लू चलती है और भारत में इसका क्या टाइम पीरियड, क्या अवधि रहती है?
देखिए, लू लगने के वैसे तो जब तक ये टेम्परेचर रहेगा 2 दिन 3 दिन जितना है वो जो है उसका लू लगने का, लू का जो टाइम पीरियड होता है हीट वेव का वो जो है पीरियड होता है। लेकिन अगर हम अप्रैल से मई तक का टाइम देखें, मार्च अप्रैल तक, इस समय पूरे भारत में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अबव नॉर्मल, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अबव रहेगा। और जो ये ड्यूरेशन होता है, अगर हम 93 से और अभी 2023 तक की बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है 4 से 6 दिन तक के लिए होता था, लेकिन इस साल ये टेम्परेचर 8 से 20 दिन तक के लिए ये मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा अब नॉर्मल।
जी, लू की अवधि सरकार ने बढ़ाई है इस बार। हरियाणा हिसार से राजेंद्र का सवाल है। हेलो,
नमस्कार जी।
नमस्कार राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब से ये जानना था जी, एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? कई बार हम पानी तो ज्यादा पीते हैं फिर भी प्यास नहीं बुझती, तो इसके लिए क्या करें? और दूसरा नंबर, जो उल्टियां लगती है तो क्या अपने आप से कोई दवाई ले सकते हैं? जैसे एक गोली आती है तो वो ले सकते हैं क्या?
ठीक है राजेंद्र जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। डॉक्टर रूपाली, जैसे इन्होंने पूछा कितना पानी पीना चाहिए, और खासतौर से क्योंकि लू से संबंधित आज हमारा वो है, तो बाहर निकलने से पहले जब हम कहीं जा रहे हैं तो अमूमन कितना पानी पी के या जनरल कितना पीना चाहिए?
जी राजेंद्र जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमें लू के समय या गर्मी के समय कितना पानी पीना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में हम रिकमेंड करते हैं कि आप लगभग 2 लीटर पानी डेली पिए, बट गर्मी के समय में आप 2 से 3 लीटर तक पानी पिए। मैं नहीं कहूंगी कि आप 3 लीटर से ज्यादा पिए, 2 से 3 लीटर सफिशिएंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने पूछा अगर वॉमिटिंग लगती है, तो वॉमिटिंग लगती है या डिहाइड्रेशन की अगर आपको फीलिंग आती है तो आपको ORS का घोल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सही अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो आपको 1 लीटर बॉटल में ORS का घोल बना के कम 1 बॉटल ORS की पीनी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 2 से 3 लीटर ही रिकमेंड किया जाता है पानी पीना। बहुत ज्यादा पानी आप तभी पिए जब आपको डिहाइड्रेशन है या लॉस ऑफ वाटर एक्चुअली है।
जी राजेंद्र जी, 2024 में सामान्य से अधिक गर्मी की बात कही जा रही है और प्रधानमंत्री ने इस बारे में समीक्षा बैठक भी की और आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश भी जारी किए, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि NDMA का जाहिर तौर पर काम बहुत पहले से शुरू हो गया होगा, गर्मी जब दस्तक भी नहीं दी होगी, तो क्या कब से आपका काम शुरू हो जाती है और कैसे विभिन्न चरणों में काम करते हैं?
देखिए, ये गर्मी जब शुरू होती है उससे पहले से ही, करीब 4 महीने पहले से हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। इस साल की अगर बात करता हूं तो मैं 9 जनवरी को NDMA ने सबसे पहले बैठक की थी जिसमें हमने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को आमंत्रित किया था और उनसे पूछा था कि लास्ट ईयर के हीट वेव में अगर कोई खामियां थी तो वो बताएं ताकि हम उनको इस साल हम उनको दूर कर सकें। इसके बाद 13 और 14 फरवरी को जो हमारा एनुअल जो मीटिंग होती है जिसको हम वर्कशॉप कहते हैं, उसमें हम सारे स्टेट्स को, सारे स्टेट जो 23 स्टेट्स हैं जो हीट प्रोन स्टेट्स हैं उनको साथ लेते हैं, प्लस इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे पावर मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, और वाटर ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इन मिनिस्ट्री के साथ को हम लाख इनको भी इकट्ठा करते हैं, अपने यहां बुलाते हैं और इनके साथ मंत्रणा करते हैं। 13-14 फरवरी को हमने ये किया था, 6 मार्च को हमने अपनी एडवाइजरी इश्यू की थी हीट के ऊपर, जो हमारी NDMA की जो एडवाइजरी होती है, और इसके साथ ही हमने जो है 27 मार्च को एडवाइजरी इश्यू की थी हमने चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को जो है हमने एडवाइजरी इश्यू की थी, और 4 अप्रैल को जो है हमने रिव्यू मीटिंग की थी 10 जो मोस्ट जो प्रोन स्टेट हैं हीट वेव वाले, उनके साथ हमने रिव्यू मीटिंग की थी, जो वर्स्ट अफेक्टेड जो स्टेट्स हैं उनके साथ, और उनसे हमने जानकारी ली कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 23 स्टेट ने अपना हीट एक्शन प्लान बना लिया है और 200 जिलों ने और 200 बड़ी सिटीज ने जो है अपना हीट एक्शन प्लान जो है तैयार किया हुआ है। इसके बाद 9 अप्रैल को जो है NEC की मीटिंग हुई थी जिसको माननीय जो है होम सेक्रेटरी साहब ने जो है इसको किया था, और 11 अप्रैल को जो है ऑनरेबल PM ने जब जो है मीटिंग की थी NDMA के साथ और दूसरे अन्य लोगों के साथ, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के सिर्फ 2 ही 3 पॉइंट थे। एक था कि उसमें हेल्थ के ऊपर जो है क्या हॉस्पिटल सेफ्टी में क्या आप लोगों ने किया है और फॉरेस्ट फायर के ऊपर आपकी तैयारियां क्या है, ये 2 मुख्य मुद्दे उस मीटिंग में रहे।
दिल्ली से धर्मवीर कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। हेलो,
नमस्कार लव जी।
नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए।
हाँ, मैं दो सवाल मेरे हैं। जैसे हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं तो हम कैसे पहचाने, क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ होती है, किस व्यक्ति को लू लग चुकी है, उसको क्या हम हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये जानकारी चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिल्ली शहर में कंक्रीट काफी हो गए, फ्लाईओवर काफी बन गए हैं, अगर लोग गर्मी से बचने के लिए छाए में खड़े होते हैं तो वो कंक्रीट की दीवार के साथ खड़े हों या ना खड़े हों, क्योंकि कंक्रीट की दीवार वैसे भी गर्म होती है और हम खुली पेड़ों के नीचे रहें, वहाँ हेल्प मिलती है हमें।
समझ गए हम धर्मवीर जी। डॉक्टर रूपाली मलिक।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक जो चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, लू के समय में हम जब भी घर से बाहर निकलें हमें कोशिश करनी है कि सिर हमारा ढका हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रिकॉशन है, आप या तो कपड़े से ढकें, हैट से ढकें, जो भी पॉसिबल है आप अपना सिर ढक के रखें, हल्के रंग के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और रेगुलर आधे से एक घंटे पे थोड़ा थोड़ा सिप्स ऑफ वाटर आप लोग लेते रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओआरएस का पैकेट अगर आपको लगता है आप ज्यादा किसी भीड़ वाली जगह या ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको ज्यादा डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग हो सकती है, तो ओआरएस का पानी भी आप अपने साथ जरूर रखें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो सिम्टम्स आपने पूछा था, हीट रिलेटेड इलनेसेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जो माइल्ड वर्जन में होता है उसमें केवल हीट रैश हो सकता है, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद जो थोड़ा सीवियर फॉर्म्स होती है उसमें हीट एग्जॉशन होता है, हीट सिंकोप होता है और फाइनली हीट स्ट्रोक होता है, जो सीवियरिटी में सबसे ज्यादा होता है। और उस कंडीशन में पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होना, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस यानी कि आपको पहचानना बंद कर देते हैं, आपको समझ नहीं आता आप क्या फील कर रहे हैं, सिंकपी में आप बेहोश हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे ग्रेड्स ऑफ हीट रिलेटेड इलनेसेस होती हैं जिनको आप आसानी से देख के समझ सकते हैं।
डॉक्टर रूपाली, जैसे आपने ये बताया किसी को लू लग गई है तो घरेलू उपाय जो तुरंत प्राइमरी वो होता है चिकित्सा
जी, बिल्कुल। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कूलिंग, सबसे इम्पोर्टेंट जो उपाय है वो है कूलिंग। और अगर आपको लगता है कि आपको क्रैम्प्स जैसी चीज हो रही है तो सबसे पहले ORS, अगर पेशेंट कॉन्शियस है वो फ्लूइड या ओरली ले सकता है तो आप उसको थोड़ा ORS या लिक्विड पिलाएं। अगर वो इस कंडीशन में नहीं है, अगर बेहोशी की हालत है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल मुंह से कुछ देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे में आप लंग्स में वो पानी जो है वो जा सकता है। तो अगर थोड़ा भी बेहोशी की कंडीशन है तो मुंह से कुछ भी ना दें,
डॉक्टर से संपर्क करें।
बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर जरा भी बेहोशी वाली कंडीशन है तो आप बिल्कुल मुंह से कुछ ना दें, डॉक्टर के पास ले जाएं। और एक कूल इवेपोरेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं, आप ठंडा पानी डालेंगे और पंखा करेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है।
आजमगढ़ से लाल बहादुर दुबे जी का एक सवाल है, जानते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो।
हाँ सर
जी, लाल बहादुर जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
सर ऐसा है कि 6 महीने का बच्चा है, उसको लू लग गया है, एक हमें भी है, हमारा 65 साल उम्र है।
6 महीने का बच्चे, छोटे बच्चे को अगर लू लग गई है डॉक्टर रूपाली,
देखिए अगेन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, लू लगने के लिए जो आपके हाई रिस्क ग्रुप्स हैं वो या तो बच्चे हैं या एल्डरली लोग, जो बड़ी उम्र के लोग हैं 60 साल से ऊपर के लोग, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जिनको और कोई बीमारी है, तो इन लोगों को खास तौर से प्रिकॉशन रखना। बच्चों के केस में मैं कहूंगी अगर जरा भी आपको लक्षण लगते हैं आप आसपास के जो भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है आप वहां जाएं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और तब तक बच्चा अगर मां का दूध पीता है तो मां का दूध पिलाते रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
राजेंद्र जी, गर्मियों में क्या करें क्या ना करें, होशियार रहें, तैयार रहें, इस गर्मी का मजा लें, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। आप ही की मैं वेबसाइट देख रही थी, उसमें लिखा है, तो बीट द हीट, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसमें?
देखिए जैसे डॉक्टर रूपाली जी ने कहा है, मैं भी यही कहूंगा कि एक तो सीधी धूप में बाहर जाने से बचें, और जो टाइम है 11 से 4 बजे का जो टाइम है इसमें अगर अति आवश्यक है तभी बाहर जाएं, वरना घर में बैठे रहें। पर्याप्त पानी पिए, ये बहुत आवश्यक है कि पर्याप्त पानी की मात्रा आप लें। सर पर जब भी आप बाहर जाएं तो या तो टोपी या कैप पहन के जाएं, और महिला जाएं दुपट्टा या कोई भी कपड़ा अपने साथ सर को ढक करके जाएं। लू लगने पर आइस पैक और ठंडे पानी का जितना इस्तेमाल हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा करें। बाहर से जब भी आप घर के अंदर आते हैं तो ठंडे पानी में पैर रखें, अगर पानी है तो ठंडे पानी में अगर आप स्नान कर सकें, नहा सकें, वो भी बहुत अच्छी बात है। घर में ORS या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है रखें, जैसे नमक और चीनी का जो घोल है वो रखें। बच्चे और बुजुर्ग घर पर ही रहें। और एक चीज और है कि पशु और पक्षियों को जो है पानी अवश्य रखें, उनके लिए भी जो है पानी की सुचारू व्यवस्था अगर आप घर के आसपास छतों पर कर दें तो भी अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात।
और दिन में एक और है कि महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि दिन में खाना बनाने से वो बचे। अगर खाना बनाना अति आवश्यक है उस दौरान 12 से और 4 बजे वाले टाइम में, तो अपने खिड़कियां वगैरह और पंखे का इंतजाम करके रखें, तभी खाना बनाए। वरना टाइम जो है मैक्सिमम खाना जो है अगर सुबह 10 बजे तक वो बना लें तो वो ज्यादा बेहतर
या 4 के बाद कुछ। महाराष्ट्र ठाणे से गुरुनाथ जी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। हेलो
मैम, नमस्कार।
नमस्कार गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए।
जी मैम, मेरा क्वेश्चन है, मैंने जो लू लगने से जो मोटी होती है मौत होती है आदमी की, तो इसका मतलब जो ज्यादा टेम्परेचर हो तो उस शरीर के कौन से ऑर्गन पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्या मतलब पानी की मात्रा कमी होने की वजह से? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आदमी को लू लगे और वो कभी कभी देखा जाता है कि वो खड़े खड़े गिर जाते हैं, तो प्रथम सर्वप्रथम उससे मतलब क्या पानी पिलाना चाहिए? थैंक यू सर।
डॉक्टर रूपाली, हाँ जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो जो सीवियर फॉर्म्स ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस होते हैं, जैसे कि सिंकपी होना, जैसे उन्होंने बोला बेहोशी की हालत, तो अगर मरीज बेहोश हो जाता है तो उसको मुंह से कुछ नहीं देना है, ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन।
लेकिन उन्होंने पूछा कि कौन से ऑर्गेन को
ऑर्गेन। जी बिल्कुल, देखिए जो सीवियर सबसे सीवियर फॉर्म है वो है हीट स्ट्रोक। उसमें आपका सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बेहोशी की हालत होती है। उसके अलावा रैब्डोमायोलिसिस होता है, जो आपकी मसल्स हैं उसके कण टूटने लगते हैं, वो जाके किडनी पे इफेक्ट करते हैं। तो किडनी इफेक्ट्स होती है, मसल इफेक्ट होता है, और आपका जीआई सिस्टम, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, कुछ लोगों में डायरिया भी हो सकता है। तो एक तरह से ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, शरीर का लगभग हर अंग इन्वॉल्व हो जाता है। उसके अल्टीमेटली हाइपोथर्मिया होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, तो फाइनली एवरीथिंग विल गेट इन्वॉल्व।
जी राजेंद्र जी, एनडीए में जो एडवाइजरी जारी करते हैं उसे क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित कर प्रचारित करने के क्या प्रबंध किए जाते हैं? और एक और सवाल, आज भी निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है जिसमें एनडीए में और बाकी मौसम विभाग के लोग गए हैं, और ये सुनिश्चित किया गया है कि मतदान के दौरान क्या क्या प्रबंध किए जाने चाहिए?
देखिए, जैसे सबसे पहले तो सबसे अपील यह है कि मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें,
मतदान जरूर
करें। और इसमें हमने आज जो चुनाव आयोग से जो बात हुई और उन्हें जो एडवाइजरी इश्यू की है, वो उन्होंने मतदान का टाइम भी जो है सुबह 7 बजे से शुरू किया है और शाम को जो है 6 बजे तक उन्होंने रखा है। और उसके लिए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जहां पोलिंग बूथ हैं वहां पर उन्होंने शामियाने का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया हुआ है, ORS का इंतजाम किया हुआ है, और जहां भी जितनी छाव पैदा कर सकते हैं और शेड हो सकते हैं वो उन्होंने किए हुए। इसके साथ ही साथ आज ही निर्णय लिया गया है कि आसपास के एरिया में एम्बुलेंस का इंतजाम भी जरूर होना चाहिए, और जितने आसपास में जिले में और उस ब्लॉक में अगर हॉस्पिटल है तो एक डेडिकेटेड वार्ड जो है हीट स्ट्रोक के लोगों के लिए भी तैयार रखना
होना
चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग जो है 5:30 बजे से चुनाव आयोग के लोग पहुंच जाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे, और 6:30 बजे के बाद जो है वो पोलिंग पे लोग जा सकते हैं, ताकि 11 बजे तक मैक्सिमम भाग लें, और उसके बाद 4 से 6, 6:30 बजे तक वो जो है भाग लें।
जैसे कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, तो बेटर है कि आप 10-11 जब गर्मी हो उससे पहले ही जाके वोट डालें। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से जितेंद्र का एक सवाल है। हेलो।
हाँ नमस्कार मैम।
नमस्कार जितेंद्र जी, सवाल पूछिए।
दोनों महाभव विशेषज्ञों का भी नमस्कार।
नमस्कार जितेंद्र जी,
मेरे सवाल है दो।
जी पूछिए।
पहला सवाल तो मेरा ये है, जैसे गर्भवती माताएं होती हैं।
आप दूसरा सवाल पूछिए, इसका जवाब डॉक्टर रूपाली दे चुकी हैं।
हाँ, तो मेरा सवाल है, जैसे सभी छोटे बच्चों को जैसे मलेरिया या उल्टी दस्त लगते हैं, इसके लिए क्या किया जाए? और जो ऐसे गर्भवती माताएं होती हैं
जी,
उनका कैसे ध्यान रखा जाए, क्या खान पीन होना चाहिए? इनपे प्रकाश डालें। नमस्कार
जी जितेंद्र जी। अच्छा, बच्चों के लिए तो सबसे जरूरी है, अगर बच्चा इतना छोटा है कि माँ का दूध पीता है तो उसे भरपूर माँ का दूध पिलाएं। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसे ऊपर से पानी देने की भी जरूरत नहीं है, माँ का दूध सफिशियंट है। बट अगर उससे बड़ा बच्चा है तो इस गर्मी के समय में आप उसको पानी अच्छे से दें, ये बहुत जरूरी है। और ऐसी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन मेंटेन करना, पानी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर आधे घंटे एक घंटे बाद आप थोड़ा थोड़ा सिप्स ऑफ वाटर लें। बट मैं ये कहूंगी कि आप 3 लीटर से ज्यादा पानी लेने की भी कोशिश ना करें, ये भी हानिकारक हो सकता है। तो 2 से 3 लीटर से ज्यादा पानी लेने की भी जरूरत नहीं है, बट थोड़े थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा पानी आप लेते रहें। और कोई दिक्कत हो तो आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में आप कॉन्टेक्ट करें।
इसके अलावा डॉक्टर रूपाली, अस्पतालों में क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं अगर कोई ऐसा मरीज आता है?
बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी सीएचसी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज इश्यू हो चुकी हैं। और जो हीट रूम प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी है, तो जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि एक थर्मामीटर का होना या ग्लूकोमीटर, क्योंकि शुगर बहुत बार इन मरीजों की कम हो जाती है, तो इन सब इक्विपमेंट्स से जो सेट आपके जो रूम्स है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। और इमरजेंसी में भी एक्स्ट्रा बेड्स आपके इस तरह के मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो ये सब प्रिपेयर्डनेस हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी चल रही है।
राजेंद्र जी, बताया इन्होंने अभी हॉस्पिटल्स का, ऑफिस के कार्यस्थल, स्कूलों में बच्चों के लिए क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि वहां क्या रखें या कार्यस्थल पे जहां मजदूर काम करते हैं?
देखिए, ये जहां पर भी कार्य मजदूर काम करते हैं उन बिल्डर्स से और मजदूरों से और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि एक तो अपना चेंज टाइमिंग जो है, जैसे मनरेगा का टाइमिंग है या स्कूल का टाइमिंग है, उस टाइमिंग को चेंज कर दिया जाए। और 11:30 से 4 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें हर जहां भी जो बिल्डर है उसको अपने आसपास के क्षेत्र में एक कोई शेड इस तरह का बनाना चाहिए जहां मजदूर लोग, महिलाएं और बच्चे आराम से बैठ करके थोड़ा रेस्ट कर सकें। इसके साथ ही वहां पर भरपूर पानी की जो है इंतजाम उनको जो है करना रखना पड़ता है, स्पेशल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। और इसके साथ ही जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो कि जिनको की पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उन लोगों के लिए भी ये ख्याल रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है कि उनको धूप से बचाने के लिए उनको भी शेड वगैरह का जो है इंतजाम किया जाए।
जी, बिहार दरभंगा से मोहन पासवान कार्यक्रम में जुड़े हैं। हेलो,
नमस्ते मैडम।
नमस्कार मोहन जी, सवाल पूछिए।
पूरे टीम सर को भी नमस्कार।
नमस्कार, नमस्कार
जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिन होने पर हवाएं इतने गर्म हो जाते हैं, लोग इससे कैसे सावधान रहे, कैसे समझे कि हम लोग से बचे?
जागरूक होने की बात कह रहे हैं राजेंद्र जी, कि वही जो आप बता रहे थे कि कौन सा टाइम जब हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, ये तो हम बता रखे हैं ना, पासवान साहब बता रहे हैं आपको कि अगर 11 से 4 बजे 3 बजे तक का टाइम जो है उस समय बाहर ना निकलें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। और अगर आप बाहर निकलना अति आवश्यक है, आपका कोई इमरजेंसी है, तो कम से कम अपने छत का, अपने जो है सर पे जो है एक कपड़ा या टोपी कोई डाल के रखें, और नहीं तो अपना गीला कपड़ा जो है अपने साथ हमेशा रखें। और ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली 2-2.5 घंटे गर्मी में और हीट में इतने अगर गर्म हवाएं चल रही हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे जो है हीट में रहें, कहीं ना कहीं बीच में जो है पानी पिए, थोड़ा आराम करें, थोड़ा सुस्ता लें और कहीं छाया में बैठ जाएं, तो उसके बाद जो है आप काम शुरू कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली इन कंडीशंस में, जबकि हीट वेव बहुत प्रचंड मात्रा में अभी बढ़ रही है, उसमें थोड़ी सावधानी अपने को भी आपको बरतनी है, अपना जागरूक आपको खुद होना है आपको।
जी डॉक्टर रूपाली, जैसे आप कह रहे हैं सिप्स ऑफ वॉच बीच में लेते रहिए, बाहर निकलने पर या जब हम घर जाते हैं तो तुरंत फ्रिज से बॉटल निकाली और पानी पी लिया, तो ये खतरनाक होता है। लगभग कितने टाइम बाद की टेम्परेचर हमारा उसके अनुकूल हो जाए पी?
जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, फ्रिज का पानी मैं नॉर्मल उसमें नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप फ्रिज का ही पानी पिए, आप नॉर्मल पानी पिए वो भी सफिशियंट है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि फ्रिज का जरूरत है तो भी आप कुछ समय आधा घंटा उसको थोड़ा सा समय दें अपने शरीर को, उसके बाद लें। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब ये सिम्टम्स होते हैं तो उस समय हम एक्सटर्नल कूलिंग करते हैं, पर जो बहुत सीवियर मरीज, जो बहुत सिक मरीज होते हैं, उसमें इंटरनल कूलिंग की भी जरूरत होती है। ऐसे समय में ठंडा पानी आपको लेना है जब एक्चुअली सिम्टम्स आपको है, बट नॉर्मल उसमें जरूरत नहीं है।
राजेंद्र जी, हम बात कर रहे थे इससे पहले कि एनडीए में किस तरीके से केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर कैसे समन्वय रखते हैं।
देखिए, हर स्टेट में अपना एसडीएमए है और हर जिले में अपना डीडीएमए है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन जो है हम लोग हर हफ्ते, जैसे आजकल तो जैसे हीट वेव है और जब कोल्ड होता है तो कोल्ड वेव के टाइम पे कंटिन्यूअसली हम इनसे जो है कोऑर्डिनेट करते हैं और उनसे जानकारियां लेते हैं कि उनकी तैयारियां कहां तक पूरी हैं, और वो एसडीएम में अपनी जानकारियां जो है हॉस्पिटल से, बिजली विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग से, वन से, इन सबकी जानकारियां एकत्र करके वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि उनकी तैयारियां कितना पुख्ता है
जी।
ये कोऑर्डिनेशन हमारा होता है, और इसके बाद इसके साथ साथ हमारी जो गाइडलाइन हमने जो हीट वेव पे बनाई है, जो एडवाइजरी इश्यू की है, और हीट एक्शन प्लान जो हर जिले ने बनाया है उसके ऊपर बात होती है कि कितना कारगर वो सिद्ध हो रहा है इस दौरान। जैसे 15 में अगर मैं बताऊं, 2015 में करीब करीब जो है हीट वेव से डेथ जो है 1600 हुई थी डेथ, लेकिन 2019 और 20 तक आते आते ये डेथ जो है 200 तक आ गई थी। तो इतना जब हम कोऑर्डिनेट उनके साथ करते हैं, रेगुलर टच में होते हैं, तो यही कारण होता है कि हम जो है प्रिकॉशन पूरा लेते हैं और अपनी तैयारियां पूरी करते हैं।
डॉक्टर रूपाली, हम जब घर या ऑफिस से चलते हैं या बहुत एसी होता है और एकदम चिल्ड होता है, वहां से हम बाहर निकलते हैं तो बाहर होती है चिलचिलाती धूप, ये तापमान जो एकदम वैरी करता है वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है शरीर को और उससे कैसे बचना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर होता है, आप एकदम बहुत ठंडे से एकदम बहुत गर्म में जाते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि अपने शरीर को 10 से 15 मिनट का एक एडजस्टिंग टाइम दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एसी से बाहर निकलते हैं तो कुछ समय के लिए आप 10 से 15 मिनट के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पर रहें, उस तभी आप उसके बाद बाहर रखें, वरना ये सेहत के लिए ठीक नहीं है
जी। और इसके अलावा कुछ खान पान का विशेष ध्यान, जैसे बाहर फलों का रस है या कई बार हम कुछ ऐसी चीज ले लेते हैं, खान पान में क्या विशेष ध्यान रखना?
देखिए, एक तो आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, बट घर पे लें, बाहर मैं कहूंगी कि बाहर ना लें क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का डर रहता है, तो जो कटे हुए फल हैं या जूसेस हैं उसमें इन्फेक्शन की इस समय थोड़ा रिस्क ज्यादा है, तो आप घर पे फ्रेश फ्रूट कटा हुआ लें वो ठीक है, और आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें, पानी लें।
राजेंद्र जी, एक कई बार हम कहते हैं कि गर्मी का रेड अलर्ट हो गया, ऑरेंज अलर्ट हो गया, ये अलर्ट हम जारी कर देते हैं और हम खबरों में भी लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली ध्यान कितना रखना चाहिए श्रोता को जब हम अलर्ट की बात कहते हैं?
देखिए, पूरे विश्व में 3 अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड। येलो का मतलब है कि ख्याल रखें, ऑरेंज अलर्ट जहां पर इश्यू होता है वहां है कि रेडी टू टेक एक्शन, कि एक्शन लेने के लिए तैयार रहें, और रेड का मतलब होता है कि एक्शन ले लीजिए अभी। तो एक्शन क्या लेने हैं, जो हमने गाइडलाइन बना रखी है गर्मी को मात देने के लिए, अगर रेड अलर्ट एनडीएमए ने और आईएमडी ने जारी कर दिया है तो इसका मतलब है कि घर बैठिए और जो प्रीकॉशंस गाइडलाइन में दिए हैं और एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर साहब ने कहा है उस चीज को ध्यान में रखे उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दें, यही हमारा रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट का।
तेलंगाना हैदराबाद वी कुमार का एक सवाल है। हेलो,
नमस्कार मैडम।
नमस्कार कुमार
जी। मैडम, मेरा नाम वी कुमार है
जी। सवाल पूछिए वी कुमार जी।
ये मतलब जो डेक्स्टर ग्लूकोन डी होता है ना मैडम, वो लेते हैं? ओके, जो मतलब
ORS और उसकी बात कर रहे हैं जी।
तो इंस्टेड ऑफ जिनको बीपी होती है, शुगर होता है, तो वो क्या लेना चाहिए?
जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट
है। सवाल जी,
तो जो शुगर के मरीज हैं उसमें आप नमक और नींबू का पानी ले सकते हैं उनको, या फ्रेश फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं उनको। मैं नहीं कहूंगी कि आप ग्लूकोन डी या शुगर वाला वो लें, तो ये इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है, ये जरूर ध्यान रखें।
और वो आप घर में भी बना,
बिल्कुल घर में बना सकते हैं, फ्रेश बनाए और फ्रेश बना के लें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट।
इसके अलावा जैसे हम कहते हैं नींबू पानी या कुछ वो पी के चले, या ताजा जो आजकल मौसमी फल हैं उनको।
अगर शुगर के मरीज दवाई अपनी ठीक से ले रहे हैं और बहुत ज्यादा पे एग्जॉशन होता है तो थोड़ा बहुत मात्रा में चीनी वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा खतरनाक है आपके शुगर बढ़ने से।
देखा जाए तो लू से बचने के छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें खुद करने चाहिए, जैसे आप दोनों ने बताया, और अब घड़ी की सुइयां जो हैं वो इशारा कर रही हैं इस चर्चा को यहीं विराम देने का। हम श्रोताओं से अनुरोध करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और लू से बचाव करें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। और इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।